نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في قران المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد هذا الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الفضل فضل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وسلم اما بعد دوستی یا کسی سے محبت اس کی دو بلکہ ایک وجہ ہے اکثر جب انسان کسی سے دوستی ہو یا کسی سے محبت ہو تو اس میں کوئی اس کی وجہ ضرور ہوتی ہے محبت کی یا دوستی کی اور وہی اس کا ریزن بنتی ہے وہی وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی دوستی ہو جاتی ہے یا تعلق ہو جاتے ہیں یا پھر محبت بڑھ جاتی ہے. مثال اس کی ایسے ہے کہ جیسے کسی کو فٹ بال کا شوق رکھتا ہے کہ میچز وغیرہ سب فٹ بال کھیلتے ہیں تو دوسرا شخص جو ہے اس کا بھی یہی شوق ہے اس کا بھی یہی ذوق ہے تو جب دونوں کا شوق ایک ہوگا تو دونوں میں پھر دوستی ہونی شروع ہو جائے گی کیونکہ کامن انٹرسٹ ہے دونوں کا. یا کسی کو کرکٹ کا شوق ہے کھیلنا تو دوسرے کو بھی یہ شوق ہے جب اس کو یہ شوق ہوگا تو دونوں کے پھر دوستی ہونا شروع ہو جائے گی. تو دوستی کی وجہ کیا ہوئی فٹ بال اس فٹ بال کی وجہ سے اس کی دوستی ہوئی اور دوستی وہ پھر بڑھ جاتی ہے پھر محبت بن جاتی ہے. یا کرکٹ کرکٹ اس کی وجہ ہوئی ریزن ہوئی جس کی وجہ سے اس کی دوستی ہوئی اور دوستی پہ وہ محبت میں بڑھ جاتی ہے کافی دور نکل جاتی ہے. بلکہ یہ ہے کہ آدمی کیونکہ کامن انٹرسٹ ہو جاتا ہے بیٹھ کے گپے مارنا شروع کرتے ہیں دو دو تین تین گھنٹے نکل جاتے ہیں بور نہیں ہوتا. لیکن اگر کامن انٹرسٹ نہ ہو تو پانچ منٹ بیٹھنے میں انسان کو بڑا مشکل ہوتا ہے دس منٹ بھی بور ہونا شروع ہوتا ہے بہانے مارتے چلنے سے. تو گویا جب تک کسی کا کامن انٹرسٹ نہ ہو کسی چیز میں دوستی نہیں ہوتی. کامن انٹرسٹ ہو تو وہ دوستی بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں گلاب کو پسند کرتا ہوں دوسرا آدمی گلاب کو پسند کرتا ہے تو پھر دونوں دوستی ہو جائے گی کہ وہ بھی یہ پسند کرتا ہے میں بھی یہ پسند کرتا ہوں تو پھر اس پہ باتیں شروع ہو جائیں گی آدمی محبت بن جاتی ہے. تو یہ ایک معیار ہے دوستی کا سٹارٹ محبت بڑھ جاتی ہے محبت بن جاتی ہے. لیکن بعض دوستی بھی عجیب ہے نہ اس میں کوئی گلاب کی محبت ہوتی ہے نہ اس میں کسی کرکٹ کی محبت ہے نہ اس دوستی کے اندر کوئی فٹ بال کی محبت ہے نہ دنیا کی کوئی محبت ہے بلکہ اس محبت کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے. یہ بھی کامن انٹرسٹ ہوا کسی کو اللہ سے محبت ہے دوسرے کو بھی اللہ سے محبت ہے تو پھر دوستی بڑھ گئی. تو یہ کیا ہوا یہ منفرد دوستی ہو جائے گی. اس دوستی کا انداز ہی عجیب ہوگا اس کا سٹائل ہی عجیب ہوگا. گلاب کی دوستی جب تک ہے جب تک گلاب موجود ہے ایسے ہی ہے نا. کرکٹ کی دوستی جب تک ہے جب تک کرکٹ موجود ہے. فٹ بال کی دوستی جب تک ہے جب تک فٹ بال موجود ہے. رشتے کی محبت جب تک ہے جب رشتہ موجود ہے. خونی رشتے کی محبت جب تک ہے جب تک خونی رشتہ موجود ہے. صلح رحمی کی محبت جب تک ہے جب تک صلح رحمی موجود ہے. اور اللہ کی محبت جب تک ہے جب تک اللہ موجود ہے. کتنا فرق ہے نہ اللہ فانی ہے نہ اس کی دوستی وہ بھی باقی ہے اور یہ دوستی بھی باقی ہے. یہ دوستی تو رہ جاتی ہے پیچھے دیکھیں آپ یہ تو ایک ساتھ ختم. جب دنیا کی ہر چیز فانی ہے تو یہ جتنی بھی دنیا کی دوستی ہوں گی कि सब रह जाती है, लेकिन जिसमें अल्लाह आ जाए बीच में दोस्ती के, अल्लाह की खातिर किसी की दोस्ती हो जाए एक दूसरे के साथ, वो दोस्ती तो कभी ख़त्म होती ही नहीं, वो तो क्यामत तक, क्यामत के बाद भी चलती है, जन्नतों में भी चलती है ना दीस कि जो जिससे दोस्ती करेगा, मोहब्बत करेगा, वो क्यामत में भी उसके साथ हो। तो कितनी बड़ी दोस्ती है दोस्तों कि अल्लाह के खातिर किसी के साथ दोस्ती हो जाए, बीच में सिर्फ अल्लाह अल्लाह का रसूल हो, तो तीसरी चीज़ हो ही ना दुनिया की, ना कोई रिश्तेदारी का मामला हो, ना किसी चीज़ का मामला हो, ना किसी लेन देन का मामला हो, ना कोई सियासत का मामला हो, ना कोई रिश्ता हो, ना कोई जान ना पहचान। बस वजह क्या है कि कॉमन इंटरेस्ट क्या है दोनों का, अल्लाह की। आप लोग क्यों आए हैं यहाँ, वैसे रिश्तेदारी है या हम एक दूसरे ताल्लुक़ रखते हैं या हमारा कुछ जानने वाला है, बहुत से तो नए चेहरे होंगे, मेरे रब ने हमें क्यों जमा कर दिया, किस नाम पे जमा किया है, अपने नाम पे। हुई ना दोस्ती कैसी, यानी बेलहाशा, जिसको आदमी सोच भी नहीं सकता। उन आम दोस्तियों के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, आदमियों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है पक्की दोस्ती करने के लिए, भाई पक्की हो जाए दोस्ती, कहीं टूटे ना। सुभान अल्लाह, ये दोस्ती कैसी है, अल्लाह की कहाँ से उठाता है, किधर मिलाता है, अपने नाम पे जमा करके मोहब्बत पैदा फरमा देता है। तो कितनी इस अब तमाम दोस्तियों के मुकाबले में एक तो ये बाकी दोस्ती और इसका फिर नाम, अल्लाह की खातिर दोस्ती हो जाए किसी के साथ, अल्लाह की खातिर किसी से मोहब्बत हो जाए। तो एक शख्स था, हदीस में है, तो सफ़र पे जा रहा था, सफ़र शुरू किया उसने, तो रास्ते में एक इंसान की शक्ल में फरिश्ता आ गया, कहने लगा भाई किधर जा रहे हो, कि अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, जाओ कोई हाजत है, कोई काम है दोस्त से, कहता ना उसका तेरे पे कोई एहसान है, लेना देना है तेरा कुछ, कहता नहीं। अच्छा कोई रिश्तेदारी है तेरी दूर से नज़दीक से कोई बिरादरी, कहता कुछ नहीं, कि तीन चीज़ों कुछ भी नहीं है, कहता कुछ भी नहीं है। तो क्यों जा रहा है, कहता अल्लाह से लिए दोस्ती है मेरी, अल्लाह के वास्ते मेरी दोस्ती है, तो मैं सब्र कर रहा हूँ उससे मुलाकात के लिए। उसने कहा अच्छा ये बात है, तो मैं तुझे बताता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे भेजा था, मैं तुझसे पूछूँ और जो मकसद तूने बताया उस मकसद से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने उसको भी बख्श दिया जैसे तू मिलने जा रहे हैं और तुझे भी बख्श दिया। देखिए कितनी बड़ी दोस्ती है, कितना अच्छा दोस्त है, कितना पायदार दोस्त है, जिसमें अल्लाह आ जाए, जिसमें अल्लाह का रसूल आ जाए। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं एक हदीस के अंदर कि रोज़े क़यामत में जब हशर का मैदान होगा और उसकी हालत ऐसी होगी कि सूरज जो है वो बहुत करीब हो जाएगा ज़मीन के, सवा नज़र तक करीब आ जाएगा सूरज, और सीधी हालत में होगा, ये भी कहा जाता है कि उल्टी हालत में, सीधा नहीं है अभी, सीधी तो बहुत रोशनी होती इसकी, तो वो सीधी पोजीशन में आ जाएगा और ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, और ज़मीन जो ये ज़मीन होगी इसको चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि इस ज़मीन के अंदर क्या है कि ये हीट को जज्ब कर लेती है, लेकिन वो जो ज़मीन होगी उस वक्त क्या होगी, तांबे की ज़मीन बना दी जाएगी, अल्लाह ताला उसको तांबे की ज़मीन बना देगा, और उस हीट बजाय जज्ब होने के वो नीचे से भी हीट करेगी, ऊपर से सूरज की हीट, नीचे से ज़मीन की हीट, और बिल्कुल सवा नज़े पे सूरज, उसमें हम सब खड़े होंगे। ये वक्त आना है, मरने के बाद ही नहीं फारिग हो गए, जैसे यहाँ मौत का इंतज़ार करते हैं ना, इसी तरह कब्र के अंदर मुर्दा किसका इंतज़ार करता है, क़यामत का इंतज़ार करता है, हश्र का इंतज़ार करता है। तो ये ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है कि भाई मरने के बाद जान छुड़ गई, नहीं, तो हर इंसान वहाँ मौजूद होगा हश्र के मैदान में। अब सोचने वाली बात है, आप सोचें तो कुरान में वाक़ियात बहुत बयान किया, ये वक्त आना है हमारे पास, बहुत जल्द आना है, बहुत जल्द आना है। इस हालत में हम सब खड़े होंगे और इस गर्मी के अंदर हर आदमी अपने पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा, और पसीने की हालत ये होगी, हदीस में आता है नबी करीम ने इरशाद फरमाया हदीस में कि किसी के गर्दन तक होगा, किसी के मुंह तक होगा, कोई बिल्कुल पसीने में होगा, अमाल के मुताबिक वो अपने अपने पसीनों के अंदर होगा। ये जो रोज़मर्रा हम अमाल करते हैं, माशाल्लाह नमाज़ें पढ़ते हैं और अच्छे नेक काम करते हैं, कुरान की तिलावतें करते हैं, सुन्नतों पे चलते हैं, ये अमाल हम करते हैं ना, इन्हीं अमाल के नतीजे में हमारा हश्र वहाँ पर होगा उस वक्त। अपने अपने अमाल के नतीजे में इंसान खड़ा होगा, उसी अंदाज में उसी अंदर पसीने के अंदर होगा, और अगर चलेगा भी तो पसीना साथ साथ चलेगा, और पसीना खुद पजात खुद इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा। उसकी मिसाल दी है कि अगर उसकी एक बूंद अहद पहाड़ पर डाल दी जाए तो उसकी शिद्दत गर्मी से अहद पहाड़ पिघड़ जाए, उसी पानी पानी हो जाए पिघल के, इस कदर गर्म होगा और इतना बदबूदार होगा वो पसीना। शायद है कि अगर वो एक बूंद पसीने की ज़मीन पे आ जाए इस वक्त दुनिया में आ जाए तो सारे जिन इंसान जो हैं जानवर उनके दिमाग उस बदबू से फट जाए, उसके अंदर वो इंसान मौजूद होंगे मैं और आप सब। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, सुभान अल्लाह। नबी में शायद फरमाते हैं कि उसी के अंदर उन्हीं लोगों के अंदर एक कौम ऐसी होगी सुभान अल्लाह कि जिसको अल्लाह ताला अपने अर्श के साए की ठंड के अंदर पनाह देगा। अर्श का जो साया होगा अल्लाह ताला उस हालत के अंदर उन इंसानों को अल्लाह ताला पनाह देगा। तो साहब ने पूछा जिसको कौन लोग होंगे ऐसे कि जो इस वक्त इतना अच्छा उनके लिए काम हो जाएगा, इतना ऊंचा इतना फर्स्ट क्लास काम होगा कि अर्श के साए की ठंड के अंदर वो मौजूद होंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो लोग होंगे जो दुनिया के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की खातिर करते हो, सिर्फ अल्लाह की खातिर करते हो। अज़माज़ बिन जबल रज़ियल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि समय तो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हब्बत हब्बनी महबैन। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। नफ्स देखिए, हब्बत महब्बत मेरी मोहब्बत उन शख्स पर वाजिब हो जाती है जो एक दूसरे से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत अल्लाह की खातिर होती है, उनका मिलना अल्लाह की खातिर है, उनकी मुलाकातें अल्लाह की खातिर हैं, उनकी मजालिस अल्लाह की खातिर है, उनका लेन देन अल्लाह की खातिर है, एक दूसरे पर जो खर्च करते हैं वो भी अल्लाह की खातिर है। फरमाया जो ऐसे शख्स होंगे अल्लाह ताला कहते हैं मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। तो मेरे भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है अल्लाह ताला ने कि हम किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत शुरू कर दें और उसका ताल्लुक किस चीज़ से हो, सिर्फ अल्लाह से हो। बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है कि अल्लाह के खातिर इंसान किसी आदमी से मोहब्बत शुरू कर दे। इसमें कितनी बड़ी हिकमत है इस मोहब्बत में, आप ये देखें। ज़ाहिर है जब इंसान अल्लाह की खातिर किसी से मिलेगा, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करेगा, अल्लाह का नाम बीच में होगा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत होगी, तो यकीन वहाँ पर अल्लाह ही की बातें होंगी, वहाँ नेक अमाली होंगे, वहाँ दोज़ख से दूर होने वाली बातें होंगी, अल्लाह करीब होने वाली बातें होंगी। तो ये मोहब्बत इतनी नाफे है इंसान के लिए, इतनी नाफे है कि हम इस मोहब्बत को तलाश करें, और ये वो मोहब्बत है जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी इस पर तलाश करने के लिए अल्लाह की मोहब्बत। ये अल्लाह वाले लोग हैं जिनके साथ इंसान जुड़ जाता है, बैठ जाता है, जिनके बारे में है कि थोड़ी सी सोबत इंसान उनके साथ अख्तियार कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सोबत की वजह से वो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। ज़ाहिर है तज़किए की मजलिस से अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र की मजालिस जो होती हैं, ज़िक्र की मजलिस, ज़िक्र की खातिर आना, ख़ास तौर पर ज़िक्र की खातिर आना, क्योंकि ज़िक्र किसका होता है, अल्लाह का है, सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र है और कोई मकसद नहीं। कितनी बड़ी चीज़ है, इंसान इसी पे पाबंदी अख्तियार कर ले, हफ्ते में एक दफ़ा सोचे कि भाई चले वहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, खालिस अल्लाह के लिए सब अख्तियार कर लें तो कितने इनामात मिलेंगे, अल्लाह की मोहब्बत वाजिब हो जाएगी, अर्श का साया नसीब हो जाएगा, अंदाजा लगाए। थोड़ी सी कुर्बानी इंसान को देनी पड़ती है, लेकिन जब तक इंसान उठता नहीं और इस मरहल को तय करने के लिए, इतने बड़े अल्लाह ने इनाम रखे, जब आदमी नीयत करता है कि मैं भाई जाऊँ अल्लाह का जिक्र करूँ, उस मजलिस के अंदर जाके बैठूँ, तौर सफर अख्तियार करूँ, तो इस पर यह है कि शैतान के और नफ्स के हमले तो होंगे इंसान पर, हर हालत में आपको रोकने की कोशिश करेगा। अजीब अजीब शक्ल में शैतान आएगा, इंसानों की शक्ल में आएगा कि मोहम्मद जाओ, अल्लाह का जिक्र मत करो, फलाना करो, हर लिहाज से रुकावटें मौजूद होंगी आपकी। लेकिन इन तमाम हदीसों को मद्देनजर रखें आप कि इनाम कितने अल्लाह पाक दे रहे, थोड़ा सा उसके साथ फाइट करना पड़ेगा आपको नफ्स और शैतान के साथ कि नहीं यार मत चलना ही, मुझे जाना ही जाना है, मैं तो ज़रूर पहुँचूँगा, और हिम्मत करके नियत करके सुबह से कि मैंने ये काम जरूर करना है, क्योंकि इनाम वक्त देखें आप कितने अल्लाह पाक ने इनाम रखे, आप तो सोचें उसे। अल्लाह की मोहब्बत वाजिब हो जाना इंसान के लिए कि कम है, कितना बड़ा इनाम है कि जिस पर अल्लाह की मोहब्बत वाजिब हो जाए तो अल्लाह क्या उसको जहन्नम में भेजेंगे, उसको क्या सजाएं देंगे। अल्लाह की मोहब्बत वाजिब हो जाए तो यकीनन उसका ठिकाना क्या होगा, जन्नत होगा, अल्लाह की रहमतें होंगी, दुनिया में भी आफत होगी उसके लिए, आखिरत में भी आफत होगी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई, हश्र का मैदान, वहाँ जो हालात और उसमें अर्श का साया नसीब हो जाए, अल्लाह की रहमत वहाँ मिल जाए इंसान को, तो कितनी बड़ी बात है। यहाँ क्या है कि सर थोड़ी सी सुस्ती और क्या रुकावट है, सुस्ती या फजूल बात की वजह से किसी रुकावट की वजह से आदमी रुक जाना, तो नियत कर ले हम तमाम हजरात कि भाई ऐसी मजलिस के अंदर जिसमें अल्लाह का जिक्र होता हो, अल्लाह की बातें होती हैं, ख़ास तौर पर अल्लाह का जिक्र जो मजलिस होती है उसमें ज़रूर पहुँचने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किस्म की तकलीफ दे चीज़ नहीं। ये तो असल में तो वहाँ बयान और तकीर भी नहीं होती। ये जो मैं अर्ज़ कर लेता हूँ थोड़ी, ये थोड़ी सी मैं जो वक्त ले लेता हूँ जिक्र का आपसे, वो इसलिए कि ये थोड़ी तरगीब देने के लिए ये बातें करनी पड़ती हैं, वरना हकीकत तो ये है कि मजलिस जो है ये जिक्र की मजलिस है, इसमें तकीर की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें तो आदमी आए और अल्लाह के जिक्र में बैठ जाए, बस जिक्र शुरू हो जाए और जिक्र मस्त हो जाए। लेकिन बताना इसलिए पड़ता है, जैसे मैंने आपको चंद हदीसें बताई हैं, कि इसमें तरगीब होती है इंसान को, फिर शौक बढ़ता है और मोहब्बत बढ़ती है, क्योंकि ज़माना जैसे जैसे दूर जा रहा है इन चीज़ों से तो तरगीब देनी पड़ती है। वरना हकीकत तो यह है कि जिक्र की मजलिस पा खुद ऐसी है कि मोहताज ही नहीं किसी चीज़ की, उसमें तो लज्जत ऐसी है कि जैसे आदमी जिक्र शुरू करता है अल्हम्दुलिल्लाह उसे मस्त होना शुरू हो जाता है, और जब उठ के जाता है तो खुद ब खुद उसके दिल के अंदर चीज़ पैदा हो जाती है, यार अगले हफ्ते फिर आएंगे इंशाल्लाह अल्लाह का जिक्र बैठेंगे और अल्लाह का जिक्र हम करेंगे। भाई इस जिक्र की मोहब्बत बढ़ाएं, अल्लाह का नाम बहुत बहुत ही माशाल्लाह इनाम याफ्त नाफे फ़ायदा मंद दुनिया में आखिरत में जो है जो अल्लाह का जिक्र बहुत इंसान को कामयाब कर देता है। अल्लाह पाक हमें भी दुआ करें कि किसी ऐसे शख्स की मोहब्बत नसीब फरमाए जो खालिस अल्लाह के लिए हो, जिसमें कोई जिससे नाम ही ना आए, किसी चीज़ का काम ही ना हो, सिर्फ मोहब्बत हो तो सिर्फ अल्लाह के लिए हो कि भाई अल्लाह का बंदा है, हम भी इसके पास बैठे हैं, हम भी इससे मोहब्बत करें और कुछ ना हो लालच किसी किस्म का भी, बस आखिरत और मोहब्बत अल्लाह की और कुछ ना हो जाए। जब मोहब्बत तो उसकी लज्जतें अजीब होती हैं, ये जब मोहब्बत हो जाए तो सारी मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं इंसान के दिल से, इसकी लज्जत अजीब, दोस्ती भी अजीब है इनसे इंसान, इस दोस्ती से इंसान सैर नहीं होता, पूरी पूरी जिंदगी इंसान की गुजर जाती है, लेकिन लगता है ऐसा कि आज ही दोस्ती शुरू की है हमने, आज ही से हमारा सफर आज ही शुरू हो रहा है इस मोहब्बत का, इतनी लज्जत है इसमें कि इंसान बोर होते ही नहीं। हर मजलिस जिक्र की आप बैठेंगे, जब भी बैठेंगे जिक्र में ऐसा लगेगा यार जैसे आज ही शुरू किया है, सुबह जिक्र में बैठेंगे पूरा जिक्र होगा, शाम को फिर आएंगे आप बोलेंगे ऐसा यार अभी किए नहीं था हम, तो बिल्कुल ताजे ताजे उसी वक्त हो जाएंगे, थकते ही इंसान क्योंकि अल्लाह के जिक्र में तो हाई लुत्फ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।